यशदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतेरवनचारि यमुनतेरवनचारि जय राधमाधव कुञ्ज विहारि जय राधमाधव कुञ्ज विहारि जय गोपि जन वल्लभ गिरिवरधारि जय गोपि जन वल्लभ गिरिवरधारि यशदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतेरवनचारि नतेरवनचारि जय राधमाधव कुञ्ज विहारि जय राधमाधव कुञ्ज विहारि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हे कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bha, Nitai Gauri Bha, Hari Bha, Hari Bha, Hari Bha. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Radha Rasmi Hari Radha Rasmi Hari Radhe. Jaya Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuma Sita Ram Lakshman Bhakta Hanuma. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Jayam Vishwampad Paramahansa Parivrajaka Charyashtra Dharasata Sri Srimadaya Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jayaskan Vividhi Sanstapika Charya Srila Prabhupada Ki Jayam Vishwampad Paramahansa Parivrajaka Charyashtra Dharasata Sri Srimad Bhakti Siddhanta Sarasati Thakur Maharasila Prabhupada Ki Jayananda Gaudi Vaishnava Vrinda Ki Jaya Namacharya Sri Haridas Thakur ki Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jaya Sri Sri Radha Krishna Gopi Gopina Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jaya Sri Vrindavan Mathura Dham ki Jaya Sri Mahapurna Vadivi Dham ki Jaya Sri Jagannatha Puri Dham ki Jaya Ganga Devi Jamana Devi ki Jai Bhakti Devi ki, Jai Srimati Tulasi Maharani ki, Jai Sri Harinama Sankirtan ki, Jai Srila Prabhupada Transcendental Book Distribution ki, Jai Sri Sri Gaur Nitai ki, Jai Sri Sri Radha Rasvi Harilalita Visakha Devi ki, Jai Sri Sri Sitaram Lakshman Bhaktanuman ki, Jai Granthraja Srimad Bhagavatam ki, Jai Samabeta Bhakta Vrindaki Nitai Gaur Premanande Hari Hari. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Alvis Guru and Gauranga Jai Srila Prabhupada. So రాజం శ్రీమద్ భాగవతం చతుర్థ స్కంద 25వ అధ్యాయ శ్లోక నంబర్ 43 కా పాఠ కర్ రహే హై. ఇస్ అధ్యాయ కా నామ హై రాజా పురంజన్ కే గుణం కా వర్ణన్. నారద ఉవాచ ఇతి తౌ దంపతి తత్ర సముద్యా సమయం మిథః తాం ప్రవిశ్య పురిం రాజన్ మమ దాతే సతం సమా. నారద ఉవాచ ఇతి తౌ దంపతి తత్ర సముద్యా సమయం మిథ తాం ప్రవిశ్య పురిం రాజన్ ముముదాతే సతం సమః. నారద ఉవాచ ఇతి తౌ దంపతి తత్ర సముద్యా సమయం మిథ తాం ప్రవిశ్య పురిం రాజన్ ముముదాతే సతం సమః. ఇతౌ దంపతి తత్ర సముద్యా సమయం మిథ తాం ప్రవిశ్య పురిం రాజన్ ముముదాతే సతం సమా. నారద ఉవాచ ఇతి తౌ దంపతి తత్ర సముద్ర సమయం మిథ తాం ప్రవిశ్య పురిం రాజన్ ముముదాతే సతం సమా. నారద ఉవాచ ఇతి తౌ దంపతి తత్ర సముద్ర సమయం మిథ తాం ప్రవిశ్య పురిం రాజన్ అముదాతే సతం సమా. నారద ఉవాచ ఇతి తౌ దంపతి తత్ర సముద్ర సమయం మిథ తాం ప్రవిశ్య పురిం రాజన్ ముముదాతే సతం సమః. నారద ఉవాచ ఇతి తౌ దంపతి తత్ర సముద్యా సమయం మిథ తాం ప్రవిశ్య పురిం రాజన్ ముముదాతే సతం సమః. నారద ఉవాచ ఇతి తౌ దంపతి తత్ర సముద్ర సమయం మిథ తాం ప్రవిశ్య పురిం రాజన్ ముముదాతే సతం సమః. నారద ఉవాచ ఇతి తౌ దంపతి తత్ర సముద్ర సమయం మిథ తాం ప్రవిశ్య పురిం రాజన్ ముముదాతే సతం సమః. నారద ఉవాచ ఇతి తౌ దంపతి తత్ర సముద్రసమయం మిథ తం ప్రవేశ పురిం రాజన్ ముమోదాతే సతం సమః నారద ఉవాచ. నారద్ ని కహా ఇతి ఇస్ ప్రకార్ తౌ వే దోనో దంపతి పతి తథా పత్ని తత్ర వహం సముద్ర సమాన రూప్ సే ఉత్సాహి సమయం స్వీకార్ కర్తే హుయే మీథా పరస్పర్ తాం ఉస్ స్థాన్ మే ప్రవేశ ప్రవేశ్ కర్కే ఊరిం నగరీ మే రాజన్ హే రాజా ముముదాతే జీవన్ కా భోగ కియా శతం ఏక్ సౌ సమాహ వరస్. జయ శ్రీ శ్రీ రాధా రాస్ విరల్తవి సగస్ సీతారామ లక్ష్మణానికి జయ. అనువాద్ ఔర్ తాత్పర్య శ్రీల ప్రభుపాద్ కే ద్వారా అనువాద్. నారద ముని నే కహా హే రాజా వే దోనో స్త్రీ తథా పురుష ఏక్ దూసరే కా పారస్పరిక సౌహార్ద ద్వారా సమర్థన్ కర్తే హుయే ఉస్ నగరీ మే ప్రవిష్ట హుయే ఔర్ ఉన్హోనే 100 వర్షో తక్ జీవన్ కా సుఖ భోగా. తాత్పర్య ఇస్ ప్రసంగ మే 100 వర్ష మహత్వపూర్ణ హై క్యోంకి ప్రత్యేక మనుష్య కో 100 వర్ష తక్ జీవిత రహనే కీ ఛూట్ హై. సూర్య సే దూరీ కే అనుసార్ విభిన్న లోకో మే జీవన్ కీ యహ అవధి భిన్న భిన్న హై. దూసరే శబ్దో మే ఇస్ లోక కీ 100 వర్ష కీ అవధి అన్య లోకో కే 100 వర్ష కీ అవధి సే భిన్న హో సక్తి హై. బ్రహ్మలోక కీ గణనా కే అనుసార్ ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, किंतु ब्रह्मा का एक दिन इस लोक के लाखों वर्षों के बराबर होता है. इसी प्रकार स्वर्ग लोक का एक दिन इस लोक के 6 मास के बराबर होता है. फिर भी प्रत्येक लोक में मनुष्य की आयु 100 वर्ष के आसपास रहती है. विभिन्न लोकों में जीवन अवधि के अनुसार ही उनके जीवन स्तरों में अंतर आता है. ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले స్వయం రూపకదామయ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేయం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవంశ శ్రీరూపం శాగ్రజాతం శగణరఘునాథ నితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపాదాన్ సగణలలిత శ్రీ విశాఖాన్వితం. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికాకంత రాధాకంత నమస్తుతే. తప్త కంచన గౌరంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ విశవానుసుతే దేవీ ప్రణమామి హరి ప్రియ. వంశాకల్పతరుభ్యః కృపాసింధువేవ చ పతితానం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో మహావదన్నాయ కృష్ణప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నమ్నే గౌరతిశే నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసాది గౌరభక్తవృంద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే ఇతి తౌ దంపతి తత్ర సముద్ర సమయం మిథ తం ప్రవిశ్య పురిం రాజన్ ముముదాతే సతం సమాహ. తు శ్రీమద్ భాగవత్ కే శ్లోక్ మే శ్రీ నారద్ ముని మహారాజ్ ప్రాచీన భవిష్యత్ కే సామ్నే जब इस पुरंजन उपाख्यान का वर्णन कर रहे थे तो उस समय वो कह रहे हैं कि किस प्रकार राजा पुरंजन उस अपनी पत्नी के साथ उस नगर में प्रवेश किया जिसके नौ द्वार थे और एक शत वर्ष तक उन्होंने दाम्पत्य सुख का भोग किया. यहां पर इस श्लोक में बताया गया है कि इति तौ दंपति तत्र समुद्र समयं मिथ. तो समुद्र अर्थात दोनों पति पत्नी समान रूप से उत्साहित है दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए और इसका कारण क्या था. मैथुनी भाव पुंसा स्त्रियो मैथुनी भाव अमेतम तयोर मिथय हृदय ग्रंथि आहुर अथ गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त जनस्य मोहयम अहं ममेति. तो ये मिथुनी भाव के कारण व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है जिससे कि हृदय की ग्रंथि और अधिक दृढ़ीभूत हो जाती है. व्यक्ति संसार के बंधन से मुक्त होने के स्थान पर और अधिक बंध जाता है और इस प्रकार इस भौतिक संसार में मोहग्रस्त होकर वो एक जन्म के पश्चात अर्थात जन्म जन्मांतर ये संसार का दुख भोग करता रहता है. इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का प्रारंभ किया तो उस समय ब्रह्मा जी ने किसी स्त्री की सहायता नहीं ली थी सृष्टि करने के लिए. ब्रह्मा जी ने अपने मन से अपने पुत्रों की सृष्टि की थी. तो इस मानस पुत्र हुए ब्रह्मा जी के, जैसे चार कुमार हैं और नारद मुनि आदि, इस ब्रह्मा जी के मानस पुत्र. ब्रह्मा जी मन से सृष्टि कर रहे थे और अपने पुत्रों को वो आदेश दे रहे थे इस ब्रह्मांड को भरने के लिए जीवों से. तो जब चारों कुमारों को आदेश दिया तो इन कुमारों ने मना कर दिया. एक कुमार राजी नहीं हुए इस सृष्टि कार्य में लिप्त होने के लिए, क्योंकि वो भगवान का भजन करना चाहते थे तो इसमें लिप्त होना नहीं चाहते थे, इसलिए ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए थे. तो ये जो मन से सृष्टि करने का जो क्रम चला था, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि इस सृष्टि को भरना ये कष्टकर है। कि जिन पुत्रों को वो बोलते हैं वो कोई मना करता है, कोई ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करता है, जैसे कुछ प्रजापति हुए जो सृष्टि कार्य में ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन किया। तो ब्रह्मा जी ने उसके बाद जब स्त्री की सृष्टि की और देखा कि स्त्री की सृष्टि के पश्चात पुरुष और स्त्री में जो स्वाभाविक आकर्षण है उसके कारण किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं होती है सृष्टि करने के लिए, ये अपने आप इस सृष्टि का क्रम चलता रहता है। जब पुरुष और स्त्री आपस में मिलते हैं तो उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि सृष्टि करो, ये स्वाभाविक रूप से उत्साही हो जाते हैं। जहां यहां पर जैसे बताया गया है समुद्र, अर्थात ये स्वाभाविक रूप से उत्साहित है दोनों आपस में मिलने के लिए। और इसका मूल कारण क्या था? मैथुनी भाव। इसके कारण ये मिलने के लिए प्रस्तुत हुए। तो ये संसार का क्रम है, संसार में बंधन का मूल कारण है मैथुनी भाव, आहार निद्रा भय और मैथुन। आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत् पशु भी नरान। और पशु और मनुष्य में ये समान रूप से दृष्टिगत होती है, आहार की प्रति उत्साह, निद्रा, मैथुन और अपनी सुरक्षा। तो इसमें मैथुनी भाव ये अत्यंत स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होता है, मैथुनी भाव जिसके बल पर वस्तुतः यह सृष्टि का क्रम चलता रहता है और लोग संसार में बंधे रहते हैं। तो ये जो बंधन है इससे व्यक्ति जीवन में बार बार कष्ट को प्राप्त होता है, जन्म मृत्यु जराव्याधि रूपक कष्ट, त्रिताप से दग्धीभूत होता है, अपने अपने कर्मों के फलों को भोग करता है संसार। तो इस प्रकार जो भी थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है व्यक्ति को इस मैथुन सुख से, उसके विपरीत उसको कई तरह के कष्ट भोग करने पड़ते हैं। तो वस्तुतः जो बुद्धिमान पुरुष हैं, यदि वो विचार करेगा अपने जीवन के संबंध में, वो देखेगा कि वो जो भी थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है उसके स्थान पर उसको दुख अधिक प्राप्त होता है जीवन में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नते आद्यंतवंत कौंतेय नते सुरमते बुधा। कि जो बुद्धिमान पुरुष हैं ये जानता है, विचार करके ये देखता है कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नते, जो इंद्रिय स्पर्श जनित जो भोग है संसार में ये दुख का मूल कारण है, बंधन का मूल कारण है। इसलिए और इसका आदि और अंत है, ये सुख सदा के लिए नहीं होता, सुख का प्रारंभ होता है, कुछ काल के पश्चात वो सुख नष्ट हो जाता है। तो ये बुद्धिमान पुरुष इस अस्थाई क्षणिक सुख में मोहित नहीं होता, नाते सुरमते बुधा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्षणिक सुख में मोहित नहीं होता है, वो तो नित्य सुख की कामना करता है, वही बुद्धिमान पुरुष है जो नित्य सुख की कामना करे, यह समझकर कि यह भौतिक सुख क्षण स्थायी है, यह अल्प समय के लिए है और इसका परिणाम दुखद है, यह दुखदायी है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष इस क्षणिक सुख के पीछे नहीं दौड़ता है। तो हम देखते हैं कि पुरंजन के उपाख्यान में आगे वो प्रसंग आएगा कि किस प्रकार ये पुरंजन दाम्पत्य सुख में आबद्ध होकर अपने जीवन को गंवा दिया और पत्नी के प्रति वो इतना आसक्त रहा कि अंत में मृत्यु के समय जब मृत्यु आई तो उस समय वो अपनी पत्नी के बारे में सोचता रहा, जिसके कारण दूसरे जन्म में उसको स्त्री की योनि प्राप्त हुई, वो स्त्री बन गया। स्त्री की चिंता करते करते दूसरे जन्म में वो स्त्री के रूप में उसका जन्म हुआ। तो ये जो सुख है, संसार का सुख जो भोग करने करते हैं या उसमें लिप्त रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कब मृत्यु आकर उपस्थित हो जाएगी, और मृत्यु के लिए ये लोग प्रस्तुत नहीं होते। और जब मृत्यु आती है, ये संसार के प्रति, सांसारिक परिवार के सदस्यों के प्रति, स्त्री के प्रति आसक्त होने के कारण दूसरे जन्म में ये लोग निम्न गति को, निम्न योनि को प्राप्त होते हैं। जैसे पुरंदर स्त्री योनि को प्राप्त हुआ, या जो जिसके प्रति आसक्त हैं उसके अनुसार वो योनि को प्राप्त होता है। और इस प्रकार संसार के दुख को भोग करता रहता है। तो ये वस्तुतः बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में इसलिए बताते हैं, उनके उपदेशों का प्रारंभ यहीं से होता है कि हम यह शरीर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जब गीता का उपदेश प्रारंभ करते हैं, अर्जुन को देते हैं, अर्जुन के माध्यम से सारे मानव समाज को ये उपदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तो कहते हैं कि हम यह शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है जो भगवान का अंश विशेष है। ममेवंश जीव लोके जीव भूत सनातन। तो ये जीव भगवान का नित्य अंश विशेष है, किंतु इस भोग इच्छा के कारण, भगवान को भूलकर भोग इच्छा के कारण इस शरीर से आबद्ध हुआ है जीव। जबकि ये शरीर क्षण स्थायी है, ये अस्थायी शरीर है, ये शरीर नष्ट होने वाला है, किंतु जीवात्मा का कभी अंत नहीं होता। जीवात्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, किंतु इस अनित्य शरीर को प्राप्त होकर हम इसको नित्य मान बैठते हैं और शरीर को सुख प्रदान करने के लिए प्रयास करते हैं, शारीरिक सुख में आनंद लेते हैं, किंतु शरीर जिस प्रकार अनित्य है, शरीर से संबंधित सुख भी अनित्य है, शरीर से संबंधित व्यक्ति विशेष भी अनित्य। जो शरीर से संबंधित पुत्र कन्या, पति पत्नी, आत्मीय स्वजन, ये भी अनित्य है, क्योंकि व्यक्ति का इस भौतिक संसार में जब जन्म होता है, अर्थात शरीर के द्वारा आबद्ध होता है, तो जीवात्मा यहाँ पर जो परिवार बसाता है, सोचता है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र कन्या है, ये मेरे आत्मीय स्वजन है, ये सब मेरे हैं। तो जनस्य मोहयम अहम ममेति। तो ये व्यक्ति का मोह है, वो सोचता है कि मैं ही यह शरीर हूँ, मैं ही इस शरीर का भोक्ता हूँ, और इस शरीर से संबंधित ये सब मेरे हैं, मेरे भोग के लिए उद्दिष्ट है। तो यही व्यक्ति का मोह है, और इसी से बंध कर व्यक्ति अपना दुर्लभ मनुष्य जीवन को नष्ट कर देता है। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इस शरीर को अपना मानते हुए नष्ट नहीं करता है। वो जानता है कि शरीर अस्थायी है, अनित्य है, ये नष्ट होने वाला है। भौतिक शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है और ये पंच महाभूत में विलीन हो जाएगा, किंतु आत्मा जो नित्य भगवान का अंश है, ये आत्मा किस प्रकार सुख या आनंद को प्राप्त होगा, इसके लिए व्यक्ति चिंता नहीं करता है, आत्मिक आनंद के लिए प्रयास नहीं करता है, केवल शारीरिक सुख के लिए प्रयास करता है जो अनित्य है। किंतु आत्मिक सुख तभी प्राप्त होता है जब आत्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहता है, संलग्न रहता है। तो वही वस्तुतः आत्मिक आनंद है। सभी पुंस परो धर्म यतो भक्ति अधोक्ष दे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध। तो आत्मा तभी प्रसन्न होता जब अहेतु की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आत्मा करती है। तो यही आनंद प्राप्त होने का एकमात्र उपाय है। किंतु जो लोग इस तत्व को नहीं जानते हैं तो ये केवल शारीरिक सुख में ही आनंद को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार दुर्लभ मनुष्य जन्म को नष्ट कर देते हैं। तो ये दुर्लभ मनुष्य जन्म बार बार ये प्राप्त नहीं होता है। तो इस संसार में लोग इस आत्मिक आनंद को प्राप्त करने का उपाय भी नहीं जानते। कैसे आत्मिक आनंद प्राप्त हो सकता है और इस आत्मिक आनंद में ही व्यक्ति शांति को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शारीरिक सुख जो है उसकी परिणति दुख है। जैसे कोई भी मीठी वस्तु का कोई सेवन करता है तो पहले जैसे उसको आनंद प्राप्त होता है, किंतु अत्यधिक मीठी वस्तु का सेवन करने से अंत में उसकी परिणति दुखद होती है। शरीर में खुजली उत्पन्न हो जाती है, शरीर का रक्त अशुद्ध हो जाता है। तो खाते समय मीठी वस्तु को खाते समय तो आनंद आता है किंतु उसकी परिणति दुखद है। शरीर में खुजली उत्पन्न होती है या रक्त अशुद्ध होता है, तरह तरह की बीमारियां होती है, चर्म रोग उत्पन्न होता है, तो व्यक्ति कष्ट भोग करता है। और जिस प्रकार कोई नीम खाता है तो पहले तो कड़वा लगता है किंतु शरीर के लिए वो उपकारी है, इससे रक्त शुद्ध होता है, खुजली दूरीभूत हो जाती है। तो उसी प्रकार जो शारीरिक सुख है ये मीठी वस्तु की तरह है, तो पहले तो आनंद प्राप्त होता है किंतु उसकी परिणति दुखद होती है। किंतु जैसे आध्यात्मिक जीवन है, जैसे भगवान कृष्ण की सेवा है, ये पहले पहले बद्ध जीव को अच्छा नहीं लगता है, ये कड़वा जैसा लगता है, किंतु इसकी परिणति अत्यंत सुखद है। जैसे बद्ध जीव माया के प्रति आकृष्ट है इसलिए भगवान के प्रति आकृष्ट होने के लिए वो नहीं चाहता है, भगवान के बारे में नहीं सोचता है। और यदि एक बार किसी साधु वैष्णव की कृपा से वो भगवान कृष्ण के ओर उन्मुख होता है और भगवान कृष्ण की सेवा करने लगता है तो फिर वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है और आनंद को प्राप्त करने लगता है। जैसे हर व्यक्ति जीवन में सुख और शांति की कामना करता है किंतु स्थायी सुख या शांति की कामना या स्थायी सुख या शांति कैसे प्राप्त होगा उसके संबंध में उसको ज्ञान नहीं होता है। तो भगवान के भक्त जन इस संसार में विचरण करते हैं ऐसे बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि नारद मुनि कृपा करने के लिए महाराज प्राचीन वही के स्थान पर उपस्थित हुए हैं, यही साधुओं का कर्तव्य होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी महाराज ये बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए वृंदावन त्याग करके वो अमेरिका गए बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए, क्योंकि बद्ध जीवों के दुखों को देखकर वो अत्यंत दुखी थे, उनका हृदय द्रवीभूत हुआ था। तो उनको कैसे इन दुखों से उद्धार करेंगे कृष्ण के बारे में बताएंगे, इसलिए उन्होंने स्वयं कष्ट स्वीकार किया और वो अमेरिका गए बद्ध जीवों के इस भक्ति मार्ग में, कृष्ण भक्ति मार्ग में लाने के लिए। और आज उसका परिणाम हम देख सकते हैं कि कैसे सारे संसार में कृष्ण चेतना का प्रचार हुआ है और लाखों की संख्या में बद्ध जीव कृष्ण के कृष्ण के चरणों में आकर दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो ये एक शुद्ध भक्त की कृपा है जिसके कारण आज सारा संसार उपकृत हुआ है। उसी प्रकार भगवान के जो भक्त होते हैं ये बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए स्वयं कष्ट स्वीकार करते हैं और सारे संसार में कृष्ण चेतना का प्रचार करते हैं। तो जब ये प्रचार करते हैं तो बद्ध जीवों में भगवान के प्रति उन्मुखता होती है, शुद्ध भक्तों के संग से, उनकी कृपा से। तो जैसे हम देखते हैं कि जब श्री प्रभुपाद ने प्रभुपाद गए थे अमेरिका, तो बहुत सारे विदेशी भक्त इस कृष्ण भक्ति में आए और जीवन के सही आनंद, आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त किया। तो किसी भक्त ने पूछा था प्रभुपाद से कि प्रभुपाद जी, हम तो इस म्लेच्छ देश में हमारा जन्म हुआ है, हमारी तो कोई अज्ञात स्वीकृति नहीं थी, तो हम कैसे इस कृष्ण चेतना में आए? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि वस्तुतः मैंने तुम्हारी अज्ञात स्वीकृति की सृष्टि की है। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनकी कृपा किसी व्यक्ति के लिए अज्ञान स्वीकृति की सृष्टि कर सकती है। तो ये हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा के कारण कैसे कितने लोग इस कृष्ण चेतना में आए। तो नारद मुनि अब महाराज प्रचिन्न वही को इस दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए इस पुरंजन उपाख्यान का वर्णन कर रहे हैं उनके सामने। और वस्तुतः इस पुरंजन उपाख्यान ये राजा प्राचीन वही, महाराज प्राचीन वही के ही जीवन पद्धति थी। तो महाराज प्राचीन वही को सीधे ना बता करके पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से नारद मुनि उपदेश देना चाह रहे हैं। तो किस प्रकार, जैसे महाराज प्राचीन वही यज्ञ अनुष्ठान करके यज्ञ में पशु बलि प्रदान कर रहे थे, और इस प्रकार जीवन में, इस जीवन में सुख और परवर्ती जीवन में सुख भोगने का प्रयास कर रहे थे, तो श्री नारद मुनि इस पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से महाराज प्राचीन वही को यही कहना चाह रहे हैं कि यह जो भौतिक सुख है यह किस प्रकार क्षणिक है और इसकी परिणति कितनी दुखद है, दुखद परिणति है। तो नारद मुनि ने कहा था महाराज प्राचीन वही को कि आप जितने प्राणियों का वध कर रहे हैं तो ये सारे प्राणी आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये सारे पशु आपके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपको इस प्रकार दंडित करने के लिए। तो आगे उसका वर्णन आएगा कि किस प्रकार जब पुरंजन की मृत्यु होती है तो किस प्रकार यमदूत उसको ले जाते हैं और उसको कष्ट देते हैं। तो उसी प्रकार महाराज प्राचीन वही भी उस मृत्यु के पश्चात कष्ट को भोग करने वाले हैं। तो नारद मुनि यही कहना चाह रहे हैं कि वे भी पुरंजन की तरह कष्ट भोग करेंगे, और वही जो प्राणी उनका वध उन्होंने किया है, जो प्राणी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये लोग अपने अपने सिंगों से उनके शरीर को क्षत विक्षत करेंगे। तो इसलिए ये जो जीवन है, सुख भोग करने का जो जीवन है, ये क्षणिक है और इसके पीछे व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं भागना चाहिए सुख के पीछे। अपने इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल बनाने के लिए व्यक्ति को तुरंत इस कृष्ण भक्ति मार्ग में आना चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा में अपने को लगाना चाहिए। किसी समय मृत्यु आ सकती है, कोई ये नहीं कह सकता कि यो 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जैसे यहाँ बताया गया है कि व्यक्ति यहाँ पुरंजन में 100 वर्ष तक सुख भोगा, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि कोई 100 वर्ष तक जीवित रहेगा, किसी भी समय मृत्यु आ सकती है। और हम यदि मृत्यु के लिए प्रस्तुत नहीं है तो हमारा यह मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो मृत्यु के लिए कैसे हमें प्रस्तुत होना है, इसका उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में दे रहे हैं और श्री नारद मुनि भी दे रहे हैं और जो भक्त जन है वो इसका उपदेश प्रदान कर रहे हैं कि किस प्रकार सदा सर्वदा भगवान कृष्ण का स्मरण करना है, उनकी सेवा करनी है। तो यही वस्तुतः भक्ति का अंग है कि भगवान की कथा का श्रवण, भगवान की कथा का कीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन और मन में भगवान का स्मरण, उनकी पूजा, उनकी वंदना, उनकी स्तुति और पूर्ण रूप से उनके चरणों में आत्मसमर्पण, ये सब भक्ति के अंग है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण की सेवा में व्यक्ति लगे रहने पर ही इस भौतिक संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है और भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त हो सकता है। अन्यथा ये जीवन नारकीय जीवन में पर्यवसित हो सकता है। तो नारद मुनि इसलिए यहां पर कह रहे हैं कि ये दोनों पति पत्नी जो उत्साहित है दाम्पत्य जीवन में दाम्पत्य सुख भोग करने के लिए, तो इस प्रकार वो दाम्पत्य जीवन को स्वीकार करते हुए मुमुदु अर्थात जीवन का भोग किया, आनंद का भोग किया और उनको पता नहीं था कि आगे क्या उनके लिए प्रतीक्षा कर रहा है, किस प्रकार का दुख प्रतीक्षा कर रहा है, इसके बारे में उनको पता नहीं था। जैसे हम जानते हैं कि अजामिल जैसे वेश्या के संग में सुख भोग कर रहा था और उसको पता नहीं था कि कब मृत्यु का समय आकर उपस्थित हो गया। तो जब मृत्यु का समय उपस्थित होता है और यमदूत आते हैं लेने के लिए उस प्राणी को जो इस संसार में केवल इंद्रिय भोग में लिप्त हुआ हो, तो उस समय व्यक्ति यमदूतों को देखकर भयभीत हो जाता है और अजामिल भी इस प्रकार भयभीत हो गया था यमदूतों को देखकर। और भयभीत अवस्था में व्यक्ति भगवान का स्मरण नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी आसक्ति परिवार के सदस्यों के प्रति रहती है, तो उन्हीं का स्मरण करता है व्यक्ति और सोचता है कि ये पारिवारिक सदस्य उसकी रक्षा करेंगे। तो अजामिल ने अपने छोटे पुत्र नारायण को पुकारा उस समय उसके प्रति आसक्ति के कारण, किंतु उसका सौभाग्य था कि अपने पूर्व संस्कारवश अपने छोटे पुत्र का नाम उसने नारायण रखा था, इसलिए नारायण नाम का उच्चारण किया अजामिल ने और नारायण के नाम के उच्चारण से अजामिल की रक्षा हो गई। तो भगवान जैसे कहते हैं कि अंतःकाल समाम एवं स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावं याति नश्रत संशय, मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है मृत्यु के पश्चात वो मेरे भाव को मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो अजामिल का वो सौभाग्य था कि उसने भगवान का स्मरण किया, नारायण नाम का उच्चारण किया और उसकी रक्षा हो गई, किंतु पुरंजन ने भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया था। जब उसकी मृत्यु का समय उपस्थित हुआ तो पत्नी के प्रति वो अत्यधिक आसक्त था। और अधिकतर लोग संसार में यही करते हैं, ये परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, पुत्र कन्याओं के प्रति आसक्त होने के कारण वो भगवान को भूल जाते हैं, भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। कहते हैं कि स्वामी जी हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत व्यस्त हैं। और किस लिए व्यस्त हैं? इस माया के भोग में व्यस्त हैं, जिसके कारण भगवान के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। और इसका परिणाम है कि वो मायाग्रस्त जीव अंत में ये संसार में बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होगा, बार बार कष्ट भोग करेगा, और इस प्रकार वो निचतर योनियों में जन्म लेगा। तो यही इसका परिणाम है। तो इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार मोह में बंधे हुए हैं, संसार के मोह में, उनको इस मोहपास से निकालने का कार्य कृष्ण भक्तों का है। जैसे नारद मुनि अब आए हैं प्राचीन वैश्य को उद्धार करने के लिए उपदेश दे रहे हैं, जिस प्रकार प्रभुपाद ने संसार का उद्धार किया है, उस प्रकार प्रभुपाद के जो अनुचर हैं, जो अनुगामी हैं, उनका भी यह कर्तव्य है कि ऐसे मोहपास में बंधे हुए व्यक्तियों को उद्धार करना, स्वयं भगवान कृष्ण की भक्ति में संलग्न होकर स्वयं भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त करना और दूसरों को भी भगवान के धाम को प्राप्त होने का मार्ग प्रदर्शित करना। और इसका सरल उपाय है कि यद्यपि हम उतने दक्ष नहीं है प्रभुपाद की तरह बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, फिर भी प्रभुपाद के आदेशों के अनुसार हम लोग प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण कर सकते हैं। और प्रभुपाद के ग्रंथ वितरण से, हम जितने ग्रंथ वितरण करेंगे, हम उतने जीवों का सचमुच उद्धार कर रहे हैं। जैसे आगे आ रहा है हमारा ग्रंथ वितरण का मैराथन, तो ये प्रभुपाद को प्रसन्न करने का बहुत बड़ा माध्यम है कि प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते थे जब वो सुनते थे कि उनके इतने ग्रंथ वितरित हुए हैं। इसका अर्थ है कि इतने लोगों की रक्षा हुई है माया के बंधन से। तो हम लोगों से जब मिलते हैं, उनको प्रचार करते हैं, उनको प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं, और इस प्रकार बद्ध जीवों को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में ला सकते हैं, जिससे ये लोग जीवन के कष्टों से, दुखों से सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो आज का यही जो श्लोक है, इसका नारद मुनि का कहने का उद्देश्य यही है कि यद्यपि पुरंजन सुख भोग में लिप्त रहा और उसको पता नहीं था, उनको ये परोक्ष रूप से नारद मुनि यही कहना चाहते हैं कि ये दोनों दंपति सुख भोग में लिप्त हो गए और उनको पता नहीं चला कि कब मृत्यु का समय आकर उपस्थित हो गया, और मृत्यु के लिए वो प्रस्तुत नहीं थे। और उसका परिणाम क्या हुआ वो आगे वर्णन करेंगे नारद मुनि। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है या पूछ रहे?
हरे कृष्ण। इस परपट में प्रभुपाद बताएं 100 साल मनुष्य का आयुष है, अगर देखा जाए तो 100 साल कली युग में ही आयुष बताया गया है फिर भी, और सत युग में 1,00,000 और 10,000 त्रेता युग द्वापर युग में 1,000, तो कैसे इसको समझें ठीक से?
ये एक औसत आयु के रूप में बताया गया है 100 साल, और ये सब 100 के गणक हैं। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जीवन धारण पद्धति के अनुसार व्यक्ति की आयु होती है। जैसे सत्ययुग में कहा जाता है कि 1,00,000 वर्ष लोगों की आयु थी, ये तो उस समय जीवन धारण पद्धति जो थी अत्यंत उन्नत थी, इसके आधार पर ये आयु की अवधि बताई गई है कि जीवन धारण पद्धति उन्नत अर्थात सत्ययुग में लोग 100% धर्मशील थे, धार्मिक थे, सत्य का अनुसरण करते थे, इसलिए उनकी आयु अधिक थी। और जैसे ही अधर्म परिव्याप्त हुआ धीरे धीरे दूसरे युगों में, जीवन धारण पद्धति में थोड़ा सा परिवर्तन आया, तो लोगों की आयु धीरे धीरे घटती गई और कलयुग में 100 वर्ष रह गई। तो हमें इस प्रकार समझना चाहिए इस बात को कि इस औसत आयु 100 वर्ष है। प्रभुपाद ने कहा है परपट में, और ये जीवन धारण पद्धति के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कलयुग में लोग पापाचार में लिप्त रहते हैं, उनके खान पान में बहुत कुछ अंतर है और उसके अनुसार उनकी आयु भी कम है उनके आचरण के अनुसार। तो हमें इस दृष्टि से मानना चाहिए कि जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु भी 100 वर्ष है, अर्थात उनके हिसाब से 100 वर्ष है, हमारे हिसाब से नहीं है। या स्वर्गलोक में देवता लोग भी उसी प्रकार जीवन धारण करते हैं, जैसे देवताओं का 1 दिन हमारे यहाँ 6 महीने हैं, देवताओं के 1 दिन और 1 रात हमारे यहाँ 24 घंटे हैं, है ना, देवताओं के 24 घंटे हमारे यहाँ 1 वर्ष, 1 वर्ष है, 12 घंटे 1 दिन हमारे यहाँ 6 महीने। तो जीवन धारण पद्धति के अनुसार ही व्यक्ति के आयु में परिवर्तन होता है। जैसे ये लोग भी 100 वर्ष हैं, किंतु हमारे हिसाब से देखेंगे तो उनका 100 वर्ष बहुत है। जैसे ब्रह्मा जी का हमारे यहाँ के 1,000 दिव्य युग होने पर ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है 12 घंटे। 1 दिव्य युग 43,00,000 वर्ष होते हैं मनुष्य के हिसाब से, या मनुष्य के इस मर्त्यलोक के हिसाब से 43,00,000 वर्ष। तो इसलिए ब्रह्मा जी का 1 दिन बहुत अधिक है और ब्रह्मा जी की आयु उस हिसाब से अधिक है, किंतु मनुष्य की आयु यद्यपि सत्ययुग में 1,00,000 वर्ष बताया गया है, वो भी उस 100 के गणक के अनुसार मानना चाहिए कि सत्ययुग के अनुसार लोगों की जीवन धारण पद्धति जो थी अत्यंत उन्नत थी, उसके हिसाब से उनका भी वो 100 वर्ष ही है सत्ययुग का। तो उसी प्रकार त्रेतायुग या द्वापर युग, उनके जीवन धारण पद्धति के अनुसार ही वो 100 वर्ष उनका है। यद्यपि हमारे हिसाब से वो अधिक है, किंतु उसी प्रकार मानना चाहिए 100 के गणक के रूप में, जीवन धारण पद्धति के अनुसार।
हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, श्री चैतन्य महाप्रभु जी जब तक इस धराधाम पे थे तो खास तौर पे संन्यास ग्रहण करने के बाद बड़ी सख्ती से महिलाओं को उनसे दूर रखा जाता था। उनके प्रवचनों में, उनके सभाओं में महिलाओं का प्रवेश सख्ती से वर्जित था। तो क्या महिला भक्त जो हैं वो घरों में उनके सिर विग्रह को रख करके महिला भक्तों को श्री चैतन्य महाप्रभु जी के सिर विग्रह का सेवा और पूजा करना उचित है घरों में रख के?
हाँ, पूजा करने में कोई अनुचित बात नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और संन्यास लेने के बाद वो संन्यास का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे संसार के सामने। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जैसा सन्यासी कोई नहीं बन सकता। इतने उच्च कोटि के सन्यासी थे और इतना आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया था कि महिलाओं से बातचीत तो दूर, यहाँ तक कि महिलाएं भी अपने अपनी सीमा में रहती थी उस समय और महाप्रभु के पास भी नहीं आती थी, वो दूर से प्रणाम करती थी। किंतु वह चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ा भक्त थी महिलाएं उस समय, और वो पूजा करती थी चैतन्य महाप्रभु। यहाँ तक कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया देवी भी चैतन्य महाप्रभु की पूजा करती थी, उनके विग्रह की सेवा करती थी। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करने के लिए या उनके विग्रह की सेवा करने के लिए कोई रुकावट या बंधन नहीं है महिलाओं के लिए। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास का, सन्यासी का आदर्श प्रस्तुत किया था, इसलिए महिलाओं से दूर रहते थे। किंतु महिलाओं के प्रति उनके मन में कोई घृणा का भाव नहीं था। तो महिलाओं से दूर रहना, उनसे बातचीत नहीं करने का अर्थ ये नहीं है कि कोई महिलाओं से घृणा का भाव रखे। चैतन्य महाप्रभु कृपालु थे, सभी के प्रति समान रूप से कृपालु थे, पुरुषों के प्रति और महिलाओं के प्रति, इसमें कोई अंतर नहीं था। इसलिए महिलाओं को भी अधिकार है वो चैतन्य महाप्रभु के विग्रह की सेवा कर सके।
हरे कृष्णा महाराज, हर एक जीव जो भौतिक जगत में जन्म लेके आता है वो उसके साथ सुख भोगने का कामनाएं भी लेके आता है, और बुद्धिमान व्यक्ति संसार का सुख का पीछे भागना नहीं चाहता है। लेकिन कलयुग में ऐसा डिग्रेडेड है कि इवन बुद्धिमान व्यक्ति का बुद्धि भ्रमण होता है, और जब वह हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए बैठता है, कृष्ण भगवान का चिंतन से उसका स्त्री का चिंतन मन में आ जाता है। उसके लिए आपके पास क्या परिहार है, क्या औषधि है?
भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि हम कैसे अनावश्यक चिंताओं से दूर रहें। अनावश्यक चिंताओं से दूर रहने के लिए मन को नियंत्रित करना आवश्यक है। और मन का नियंत्रण कैसे हो सकता है कि जब हम मन की प्रवृत्ति को समझें। मन के तीन प्रकार की प्रतिक्रियाएं मन में सदा सर्वदा चलती रहती है। चिंतन, मन में हम कोई वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं तो तुरंत मन में उसकी चिंता होती है, हम चिंतन करते हैं उसके बारे में। और यदि वो भोग की वस्तु है, भोग का विषय है, तो भोग के विषय में जब हम चिंता करते हैं मन में, तो फिर हम अनुभव करते हैं मन ही मन, वो वस्तु मुझे यदि प्राप्त हो जाए तो हमें कैसा सुख प्राप्त होगा। मन ही मन पहले उस सुख को हम भोग करते हैं मन में, जबकि वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुआ है। और उसके पश्चात हम उस वस्तु को जब अधिक समय चिंता करते हैं तो हम उस वस्तु को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न होती है मन में। तो इस प्रकार व्यक्ति प्रयास करता है उस भोग वस्तु को प्राप्त करने के लिए, तो यहीं से शुरू होता है पतन व्यक्ति का मन से। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ध्यायतो विषयानुपुंसा संगस्तेषु उपजायते। तो जब मन में हम ध्यान करेंगे विषय भोग के बारे में, तो उस विषय का विषय भोग का संग प्राप्त करने के लिए मन में कामना उत्पन्न होगी, ये स्वाभाविक है। और उससे फिर क्रमिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होगी, जैसे ध्यायतो विषयानुपुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, काम क्रोध विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, ये सब क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं चलती रहेगी। तो इसलिए जो साधक हैं उसको सर्वप्रथम मन को नियंत्रित करना चाहिए, अर्थात मन में जैसे ही विषय भोग की चिंता या स्त्री की चिंता या कोई भी चिंता आती है, तो उस चिंता को अधिक समय के लिए मन में नहीं रखना चाहिए। अधिक समय चिंता आएगी, मन में चिंता आ सकती है, उसको रोकना मुश्किल है, कष्टसाध्य है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति उस चिंता को अधिक समय तक मन में नहीं रखता। चिंता आते ही उस चिंता को दूर करने के लिए, हटाने के लिए वो प्रयास करता है, क्योंकि अधिक समय तक मन में आप चिंता करेंगे तो फिर आप मन को अपने वश में नहीं कर सकते। मन में अधिक समय तक विषय भोग की चिंता आने पर वो पुनः उस वस्तु को प्राप्त होने की कामना उत्पन्न हो जाएगी, और उस समय इंद्रियों को नियंत्रित करना आपके लिए कष्टसाध्य होगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, मन में चिंता आते ही उस चिंता को अधिक समय तक मन में रहने नहीं देता, तो तुरंत उसको मन से निकाल करके, क्योंकि मन खाली नहीं रह सकता, तुरंत कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण का स्मरण, इनका रूप नहीं आता है मन में, तो भगवान के विग्रह को हम स्मरण कर सकते हैं, जिन विग्रहों की हम पूजा करते हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उनका स्मरण कर सकते हैं, उनके रूप को हम मन में ला सकते हैं, उनके बारे में चिंतन शुरू कर सकते हैं, जिससे वो चिंता दूर होती जाएगी, हो जाएगी। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम मन को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे उस चिंता से, और उस चिंता से डूबे रहने के कारण हमारी आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी जिस व्यक्ति या वस्तु की हम चिंता करते हैं, फिर मन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए साधक यही रोक देता है, और भगवान ने इसलिए कहा है कि मन को निरोध करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो यही चिंता को रोक करके कृष्ण का ध्यान लाना है, कृष्ण का चिंतन करना है। इस प्रकार हम मन को अपने वशीभूत कर सकते हैं, अन्यथा वशीभूत करना संभव नहीं है। कृष्ण चिंतन एकमात्र उपाय मन को नियंत्रित करने का। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।